हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 27। आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आध्यात्मिकता को प्रणाम। सब ध्यान से मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहकणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादास् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्ता श्रीराधाकान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु सूतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 27। कल हमने भगवान श्री कृष्ण ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो सुनने की विधि को में रुचि रखते हैं यानी कि जो प्रामाणिक स्रोतों से सुनते हैं वे भी परमात्मा को जान सकते हैं। सुनने की विधि में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गुरु परंपरा के जो गुरु है ना उनसे जो सुनते हैं वही आप है ना वही सही होता है। देखो जैसे शिला प्रभुपाद के तो हजारों लाखों की तादाद में शिष्य हैं, आप किसी से भी सुनते हो तो वो प्रामाणिक होता है। वो मैं गुरु की बात नहीं हो रही थी, श्रवण करने जिससे भी आप श्रवण करते हो ना वो प्रामाणिक व्यक्ति से सुना हुआ होना चाहिए। जैसे श्री प्रभुपाद के कितने सारे शिष्य हैं लेकिन गुरु तो सिर्फ 11 उन्होंने नियुक्त किए थे कि भाई ये 11 गुरु हैं, इसके अतिरिक्त भी जो जो मतलब आगे बढ़ते जाएंगे वो 11 में एड होते जाएंगे, लेकिन उन्होंने नाम कितने लोगों के दिए थे सिर्फ 11 में, लेकिन उनमें से आप किसी के अंडर भी रहकर आप अगर श्रवण करते हो तो वो ऑथेंटिक है। उसी तरह श्री भक्तिपाद के कितने सारे शिष्य हैं, उनमें से कोई भी अगर आपको एज इट इज बताता ना तो वो प्रामाणिक है। जरूरी नहीं है कि वो गुरु नियुक्त किया गया हो, बस आप किसी भी शुद्ध वैष्णव है। मैंने कल भी बताया था कि आप डिसाइड ही नहीं करो कि मुझे इससे सुनना है, आप भगवान के सामने प्रार्थना करो कि कोई शुद्ध वैष्णव शुद्ध भक्त के जरिए मुझे ये ज्ञान जानना है, तो भगवान खुद ही कोई ना कोई सुविधा आपको प्राप्त करा देंगे। ये जरूरी नहीं है कि परंपरा से आया हुआ गुरु जो है, क्योंकि गुरु का सानिध्य तो सब लोग इतने लकी नहीं होते हैं। जैसे हम तो यहाँ पर रहते हैं, हमने तो श्री भक्ति पाद से कभी हमारा सानिध्य डायरेक्ट हुआ ही नहीं कि हम उनसे, गुरु का ये नहीं होता है। देखो गुरु क्या है, उनका हृदय से होता है दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित हो। गुरु को जैसे जैसे पता चल जाता है कि मेरा ये शिष्य अब इस काबिल हो गया है, तो उसी हिसाब से उसको दूसरा मतलब वर्तमान आचार्य उसको कोई ना कोई प्रोवाइड करता है। जैसे कोई ना कोई उसको मिल जाता है गुरु के होते, वो गुरु के ही आदेश हैं, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आपको आकर उसको देंगे। अब जैसे गुरु महाराज स्वयं तो अपने हर शिष्य, गुरु एक गुरु महाराज के तो लाखों शिष्य होते हैं, कोई कहाँ होता है, कोई किसी कंट्री में होता है, उधर सबके पास तो वो नहीं जा सकते। लेकिन जैसे जैसे देखो ये मार्ग कृपा का मार्ग है, और कृपा कैसे होती है, परिश्रम जितना हम करेंगे ना उस हिसाब से गुरु महाराज की कृपा हम पर होती जाएगी। तो हम हमारी सिंसियरिटी को देखते हुए गुरु किसी न किसी व्यक्ति को भेजते हैं जो प्रामाणिक होता है, जो आपको एज इट इज बताता है। लेकिन कब, जब आपका प्रयत्न सही होगा। जरूरी नहीं है कि गुरु स्वयं आपके आके आपको बताए। तो कोई भी हमारे जो ऑथेंटिक लोग हैं, किसी से भी आप सुनते हो, अगर वो एज इट इज शास्त्र की आपको बात बताते हैं तो वो तरीका सही है। और उसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कल हमारा जो श्लोक था वो बताया था। और लास्ट लाइन अगर हम देखें तो एक दफा वापस से, प्रामाणिक व्यक्ति से लिखा हुआ है, प्रामाणिक गुरु ने लिखा हुआ है, प्रामाणिक व्यक्ति यानी जिन्होंने प्रामाणिक स्रोत से सुना हुआ है, उससे यदि श्रद्धा पूर्वक आप श्रवण करते हैं और उससे करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम को जाने में उसे सहायता मिलेगी। देखो ये सिर्फ प्रामाणिक व्यक्ति की बात हो रही है जिसने प्रामाणिक साधनों से श्रवण किया है। कोई मैं गुरु परंपरा का नाम नहीं ले रही थी कल। आज ना आज का श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण हमें वापस से जो जो बता चुके हैं ना उसके विषय में और भी अच्छे तरीके से बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्र त्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् मतलब जो कुछ भी आपको नजर आता है इस संसार में, जो कुछ भी है संजायत यानी जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, चाहे किंचित कुछ भी हो, कुछ जरा सा भी है, चाहे सत्वम मतलब अस्तित्व जिसका भी है इस संसार में, जिस जिस चीज का अस्तित्व है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, चाहे वो स्थावर हो, स्थावर मतलब लिविंग बॉडीज, अचर, स्थावर मतलब जो नहीं चल, अचर है, मूव नहीं कर सकते, और जंगम मतलब चर, जो मतलब लिविंग बॉडीज और नॉन लिविंग, जो भी आप नजर आ रहा है संसार में, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो है क्या, उसकी रियलिटी क्या है, उसको बता रहे हैं भगवान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्, क्षेत्र मतलब पता ना आपको शरीर जो किससे बना है, 24 तत्व से। अब वो शरीर किसी का भी हो सकता है, हम शरीर बोलते तो कहते हमारा शरीर या मनुष्य देह नजर आता है, नहीं ऐसा नहीं है। जितने भी 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई है ना, इस जितने भी है वो क्षेत्र और उनका अक्षेत्रज्ञ। अक्षेत्रज्ञ क्या है, दो क्षेत्रज्ञ पढ़े ना हमने, एक तो आत्मा जो अपने शरीर के विषय में जानती है, चाहे वो किसी भी शरीर में हो वो अपने शरीर के विषय में जानती है, और एक उसके साथ बैठा हुआ परमात्मा, दो क्षेत्रज्ञ हैं, ठीक है। तो यहाँ भगवान के कह रहे हैं कि इस संसार में आप जो कुछ भी देखते हो, चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगमम हो यानी लिविंग बॉडीज हो या नॉन लिविंग एंटिटीज, जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, वो रियल में क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। संयोगात मतलब जब शरीर और शरीर के ज्ञाता यानी प्रकृति, ये शरीर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जब आपस में मिलाप हो जाता है, तत्विद्धि ऐसा आप जानो भरतर्षभ। हे भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ, आप ये जान लो कि संसार में आपको जो कुछ भी नजर आ रहा है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसकी रियलिटी ये है कि वो क्षेत्र और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का मिलाप है, उसका संयोग है। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब अनुवाद देखिए, हे भरत श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि की के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई। अब भगवान श्री प्रभुपाद जी हमें वापस से याद दिला रहे हैं कि जो प्रकृति के अंदर आपको नजर आ रहे हैं ना, प्रकृति और जीव, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कहा था, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, कि ये अनादि है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी वापस याद करा रहे हैं कि इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि से भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो भी जो कुछ भी उत्पन्न किया गया किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। अब संसार में जो कुछ भी नजर आता है वो दो चीजों का मिलाप है, एक तो आत्मा और दूसरा जो प्रकृति है, उन दोनों का जब मिलाप होता है तो कोई ना कोई नया जीव उत्पन्न होता है। जैसे श्री प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, वृक्ष पर्वत आदि ऐसे अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। अब यहाँ पर लिखा हुआ ना स्थावर जंगमम, उसको ना ये सब बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि कुछ ऐसे हैं जो गतिशील नहीं है, मतलब वो मूव नहीं कर सकते ना, जैसे वृक्ष और पर्वत। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तु हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र से। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मूव करती हैं, वो तो बहुत सारी हैं, जैसे जानवर हैं, परिंदे और सब मूव करते हैं, वो सब क्या है, भौतिक प्रकृति। अब भौतिक प्रकृति क्या है, 24 तत्व, ठीक है। और परा प्रकृति क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने कल हमने पढ़ा था ना सातवें श्लोक में, सातवें अध्याय के श्लोक नंबर 5 में कि ना जीव भूता महाबाहो ये दमदार ये जगत, ये पराशक्ति है, जीव जो है वो पराशक्ति है जो कि सारी भौतिक प्रकृति का को ग्रहण कर रही है, उसको यूज कर रही है। तो ये संसार में जो भी चर और अचर, लिविंग और नॉन लिविंग जो भी चीजें हैं, नॉन लिविंग नहीं भी हो मतलब मूवमेंट करने वाली, जैसे वृक्ष जो होते हैं वो होते तो लिविंग है ना लेकिन मूव नहीं करते। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, स्थावर जंगम, यानी जो मूव कर सकते हैं जो नहीं भी मूव कर सकते हैं, वो दोनों क्या है, वास्तव में प्रकृति और जीव का मिलाप है, उनका संयोग मात्र है। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। आत्मा जब तक किसी चीज में नहीं जाती है तो कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता है। अब परा प्रकृति तो बताया ना मैंने आपको कल कि परा प्रकृति क्या होती है, जीव परा प्रकृति है, और अपरा प्रकृति क्या होती है, जो भगवान श्री कृष्ण ने सातवें अध्याय में बताया था, भूमि रापो नलो वायु कम मनो बुद्धि एवच, ये 8 चीजें भगवान ने बताई थी, ये अपरा प्रकृति और परा जीव भूता महाभाव, ये परा प्रकृति है, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि परा प्रकृति के अतिरिक्त जब तक उसमें जीव स्पर्श नहीं होता है किसी चीज में, तब तक कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता है। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है, और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। यानी कि ये कर्ता कौन है, इन दोनों को आपस में मिलाता कौन है, एक आत्मा को दूसरे आत्मा के अंदर, प्रकृति को इस तरह किस कौन कर रहा है, ये सब परमात्मा जो है, भगवान जो है, उस वो सब ये सब काम कर रहा है। अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृति के नियामक हैं। यानी कि देखो, अब जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे वैसे प्रकृति के बनी हुई किसी शरीर के अंदर हमें डाल दिया जाता है। तो ये कौन कर रहा है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो वो क्या है, अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृति के नियामक, उन दोनों को कंट्रोल करने वाले हैं, अपने अंडर कंट्रोल में रखे हुए हैं वो भगवान। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्टि है, और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। ठीक है, जो अपरा प्रकृति है ना, जैसे भूमि रापो नलो वायु खमनो, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इन आठ चीजों से मिलकर वो कोई शरीर को शरीर नहीं बनता है। ठीक है, और उसके अंदर देखो यहाँ पर बताया गया ना कि अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृति के नियामक है, अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्टि है, यानी कि वो पहले अपरा प्रकृति की सृष्टि करते हैं और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति के अंदर रखी जाती है और जीव को उसके अंदर फिट कर देते हैं। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं, इसी तरह से ये सब कार्य हो रहा होता है। आगे पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट श्लोक है 28। श्लोक नंबर 28 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समम का मतलब होता है समभाव से, एकदम इक्वल तरीके से, सर्वेषु सारे जितने भी हैं, भूतेषु भूत मतलब जो भूत प्राणी हम लोग घूम रहे हैं ना जिसी भी रूप में, वो जीव जितने भी हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वर, तिष्ठन्ति मतलब वास करते हैं। अब यहाँ पर जो पहला वाला श्लोक था ना अभी हमने पढ़ा, उसमें आत्मा और क्षेत्र, यानी क्षेत्र और जीवात्मा जो फर्स्ट उसका गया था ना, उसके बारे में बताया। क्या बताया? कि प्रकृति भगवान सृष्टि करते हैं और उसके अंदर जीव को फिट कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सेकेंड ज्ञाता को भगवान कैसे भूल सकते हैं, उसके बारे में अब बता रहे हैं कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वर, परमेश्वर मतलब परमात्मा के रूप में इन दोनों इन इस प्रकृति के अंदर जब जीव होता है तो उसके साथ साथ परमात्मा भी फिट वहां पर होता है और सबके अंदर इक्वल रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पर बता तिष्ठन्ति परमेश्वर, और आगे बहुत अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, विनश्यत्स्व, विनश्यत मतलब विनश्यत्स्व मतलब विनाश हो जाता है जब संसार में इस प्रकृति के अंदर बनी हुई प्रकृति के बनी हुई चीज का विनाश हो जाता है, तो अविनश्यंतम विनश्यंत अविनश्यंतम, यानी कि उसका वो नाश नहीं होता है। किसका नाश नहीं होता है? जो आत्मा और परमात्मा की बात हो रही है ना अभी, जैसे बताया कि उसके अंदर परमात्मा फिट हुआ है, तो विनश्यंत विनश्यंतम यानी कि जब नाश होता तब भी उसका नाश नहीं होता है, जो मतलब ऐसा पश्यति ऐसा देखता है, सह पश्यति वही वास्तव में देखता है। यानी अनुवाद पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। भगवान कह रहे हैं कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, यानी आत्मा भी है और उसके साथ साथ परमात्मा को भी जो रियलाइज करता है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं ना कि नहीं बस आत्मा ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परमेश्वरम। अब देखो अगर दोनों एक ही होते तो भगवान को दूसरा श्लोक बोलने की क्या जरूरत थी, बस यहाँ पर खत्म कर देते ना कि भाई क्षेत्र क्षेत्र के हैं और है ना उसके अंदर क्षेत्र के अंदर उसको फिट कर दिया जाता है। लेकिन अभी आगे भगवान ने श्लोक बोला है कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वर, सबके सारे भूतों के अंदर जीवों के साथ साथ, देखो भूतेषु मतलब जीव, उसके साथ साथ तिष्ठन्ति परमेश्वर, उसके साथ साथ परमेश्वर भी है। और आगे बताया विनश्यन्तम यानी कि जब उसका नाश हो जाता है तब भी, जब प्रकृति का नाश होता है तब भी उसका नाश नहीं होता है उन दोनों का, सह यह पश्यति सह पश्यति। तो भगवान कह रहे हैं जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनष्ट होते हैं होता है, वही वास्तव में देखता है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। सत्संगति, देखो यहाँ पर भगवान ने श्री प्रभुपाद ने कितना अच्छा लफ्ज बताया कि जो सत्संग मतलब रियल, सत्य का मतलब होता है जो रियलिटी है, जो तत्व है, उसका जो संग करता है, यानी जो तत्व ज्ञानी है उसका संग करता है। अब देखो ये चैप्टर कितना हार्ड था, अगर शिला प्रभुपाद ने इतना अच्छा तात्पर्य हमें नहीं बताया होता, हमने उसको इतना अच्छे तरीके से सीरियस नहीं सुना होता, तो हमें कभी ये चीज समझ में आती क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र क्षेत्र परम क्षेत्रज्ञ, ये समझ में नहीं आता ना। लेकिन शिला प्रभुपाद जी बोलते जो व्यक्ति सत्संगति से इन तीन वस्तुओं को, क्या शरीर यानी क्षेत्र, शरीर का स्वामी यानी क्षेत्रज्ञ या आत्मा, ये क्षेत्रज्ञ आत्मा तथा आत्मा के मित्र यानी क्षेत्रज्ञ जो दूसरा क्षेत्रज्ञ दो बताए ना हम लोगों को, एक साथ संयुक्त देखता है, इन सबको समझता है, इन सबको जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है भगवान। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते देखो भगवान ने कहा ना यह पश्यति सपश्यति, मतलब जो ये समझता है वही रियल में समझता है। तो श्री प्रभुपाद जी अब आगे बताते हैं कि जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता, यानी कि जो रियल आध्यात्मिक ज्ञाता है ना, जो जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये सब बताया है, जब तक इसे लोगों का हम संग नहीं करेंगे, जब इस को नहीं समझते हैं, जब तक जो लिखा हुआ है शास्त्र को हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं, मतलब यहाँ पर तो ये बताया गया जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता, अब हम लोग क्या है, अब कोई यहाँ पर बैठ के अपनी मति से समझाने के लिए कितनी भी प्रयास करता ना, अगर अपनी मर्जी से, ये शिला प्रभुपाद का भावार्थ था, हम लोग तात्पर्य नहीं पढ़ते तो मर जाते लेकिन समझ में नहीं आता, लेकिन कृष्ण कृपा होती है, जैसे मैंने कहा जब हम सीरियस होते हैं, सिंसियर होते हैं और श्रद्धा से सुनना चाहते हैं, तब तक हमें प्रमाणिक तरीका मिल ही जाता है, भगवान कैसे नहीं हमें छोड़ देंगे ऐसे ही। तो बताया आध्यात्मिक विषयों की वास्तविक ज्ञाता, जैसे हम श्रवण प्रभुपाद का है ना संगति कर रहे हैं, श्रवण प्रभुपाद के एज इट तात्पर्य को समझ रहे हैं, तो वास्तविक ज्ञाता है ना वो, उसकी संगति जब तक नहीं मिलती तब तक कोई इन तीन वस्तुओं को तो समझ ही नहीं सकता, उन देख ही नहीं सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती है, यानी कि जिनको ये नहीं समझ में आता है, वो तो समझो अज्ञानी है, वो बेचारे उनको संगति नहीं मिली है, या मिलती है तो भी वो उसको सही तरह से सीरियस लेते नहीं है, तो वो अज्ञानी है, वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। वो तो सिर्फ ये समझ ही नहीं सकते कि शरीर तो खाली प्रकृति है यार, 24 तत्वों को मिला के आपस में बना के रख के दे दिया, एक प्लास्टिक की थैली में भगवान ने ना अच्छे से डेकोरेट करके दे दिया, लेकिन वास्तविक चीज क्या है, आत्मा और परमात्मा उधर देखते ही नहीं है, मर जाता है कोई जीव निकल जाता है तो समझते हैं शरीर भी नष्ट हो जाता है, तो समझते हैं सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है। भगवान ने बताया ना विनश्यन्त्य विनश्यन्तम् यह पश्यति सपश्यति, जानने की बात तो ये है कि जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तब भी आत्मा और परमात्मा सही वही रहते हैं। अब कुछ लोगों को बताओ कि भाई आप क्या अपने संसार में जब थोड़ा टाइम आए हो तो भगवान की भक्ति करो, उसके बाद आपको रियल में सुख मिलेगा, तो बोलेंगे वो दुनिया किसने देखी है, वो तो किसी ने देखा ही नहीं, यहाँ पर तो मजा कर ले, यानी कि वो शास्त्र पर वो यकीन नहीं करते, एज इट इज को भरोसा नहीं करते, वो बोलते हैं अब ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर भी हम मजा नहीं करें और बाद में भी, तो मजा पता नहीं मिले नहीं मिले। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम ज्ञान हासिल नहीं कर सकेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बोल दिया 4.39 में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपको अगर ज्ञान हासिल करना है तो उसके लिए आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। अगर नहीं रखते, समझो जो लोग नहीं रखते उसके लिए भगवान ने क्या कहा, अज्ञस्य अश्रद्धदानस्य संशय आत्मा विनश्यति, उनका विनाश हो जाएगा, उनको कभी सुख नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान हासिल करना नहीं चाहते हैं वो अपनी लाइफ में सुखी रहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब तक ये सब नहीं समझते हैं, जब तक ये चीजें हम अपने हृदय में नहीं उतारते तब तक सुख का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। संशय नायम, और सुख यहाँ पर तो क्या भगवान कहते हैं 4.40 में, नायम लोको नास्ति न परो, ना इस संसार में जो ये संसार में वो रहते हैं उसमें, और ना ही परलोक में कभी उनको सुख और आनंद मिल सकता। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अब देखो कुछ लोग डॉक्टर नहीं बनते, कुछ इंजीनियर नहीं बनते, कुछ वकील नहीं बनते, तो हम ये तो नहीं बोलते कि उनकी जिंदगी जाया हो गई। अब जैसे मैं डॉक्टर नहीं बनी तो आप ये तो नहीं बोलो कि भाई प्रिया दीदी आपने तो अपनी जिंदगी जाया कर दी, डॉक्टर नहीं बनी। लेकिन अगर इस संसार में मनुष्य जीवन लेकर हमने ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, और जब यमदूत लेने आएंगे फिर तब वो हमें खड़े होकर बोलेंगे यार तुमने तो अपना जीवन ही जाया कर दिया, अपनी जिंदगी जाया कर दी। इस संसार के जो भौतिक ज्ञान है ना उसको हासिल करने ना करने वाले को कभी कोई नहीं बोलेगा यमदूत कि यार तुम डॉक्टर नहीं बने आकर, डॉक्टर बनना चाहिए था, इंजीनियर बनना चाहिए, सीए भी नहीं किया तुमने, क्या किया आकर खाली बस आध्यात्मिक ज्ञान, ऐसे नहीं बोलेंगे। बल्कि ऐसे बोलेंगे ये सारा तुमने जीवन इतना अच्छा तुमको मिला था उसको तुमने जाया कर दिया भौतिक एजुकेशन में, आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने की तुमने कभी कोशिश ही नहीं की, अब चलो नरक में तुमको बिठाता हूँ। स्वर्ग में तुम मतलब अच्छी जगह पर तो तुम जा ही नहीं सकते हो, तुमने तो सारा अपना जीवन है ना इसी फिजूल की चीजों में नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी बताया, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। यानी कि जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक अनेक रूप उनको मिलते रहेंगे, वो नाश नहीं होंगे। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीव आत्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतर कर जाता है, इस तरह वही स्वामी है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर आत्मा को भी परमेश्वर कहा जाता, हो सकता है ऐसा हो, हम लोग आगे हो सकता है आगे दूसरे संस्कृत के श्लोक में ऐसा होगा क्यों, और ऐसा श्री प्रभुपाद जी उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से तो वो भी तो स्वामी है ना इस शरीर की, उस शरीर को यूज कर रही है, तो स्वामी और शरीर के विनाश होने पर अन्यंत्र देहांतर कर ही रहा है, वो भी परमात्मा के साथ वो भी दूसरे शरीर में जा रहा है, अपना शरीर बदल रहा है, इस तरह वो स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं, यानी कि कुछ लोग परमेश्वर परमात्मा दोनों को एक ही मानते हैं। अब परमेश्वर मतलब ईश्वर का मतलब क्या होता है, स्वामी, और परम आत्मा का मतलब होता है आत्मा जो है उसका स्वामी। ईश्वर का मतलब है किसी भी, परमेश्वर मतलब जो शरीर है उसके स्वामी, आत्मा को भी कभी परमेश्वर बोल सकते हैं लेकिन उसको परमात्मा नहीं बोल सकते, ठीक है। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं। अब चाहे जो भी समझो, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आत्मा और परमात्मा दो हैं, वो दोनों रह जाते हैं जब नष्ट होता है शरीर, तो वे दोनों चीजें कौन कौन सी, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों नष्ट नहीं होती है। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है, यानी कि इन दोनों को, इन दोनों के अस्तित्व को जो देखता है वही रियलिटी में देखता है कि क्या घटित हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। श्लोक नंबर 13.29 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् नहि नस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि, समं मतलब समान रूप से, एकदम इक्वल रूप से, पश्यन् मतलब देखते हैं, ही निश्चय बिल्कुल दोनों को एक जैसा ही समान रूप से देखते हैं, पश्यन्ति सर्वत्र सभी जगह हर जगह पर, समवस्थित समान रूप से स्थित देखते हैं, किसको, परमात्मा ईश्वरम परमात्मा को, जो परमात्मा को भी देख रहा है समान रूप से हर जगह स्थित देखता है। न हिनस्ति मतलब नीचे, न मतलब नहीं, हिनस्ति मतलब नीचे गिराता है, आत्माना आत्मा नहीं नत्मना आत्मना मतलब मन से। अब आत्मा को मन का भी मतलब होता है, देखो ये मन होता है ना उसको भी कभी कभी आत्मा कहा गया, तो फिर हमें ये जो ट्रांसलेशन लिखा होता है ना उसमें जरूर देखना होता है, कहीं कहीं आत्मा का मतलब मन भी होता है। तो यहाँ पर क्या बताया, आत्मना मतलब मन से, और आत्मना आत्मानम यानी आत्मा को, जैसे इसका कैसे मतलब निकालेंगे कि मन से आत्मा को, ठीक है। तत तब, और आगे बताया, ततो याति परम गतिम, तब वो पहुंच जाता है कहां पर, परम गति में, यानी कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव के समान रूप में वर्तमान देखता है, आत्मा परमात्मा को हर जगह हर जीव में समान रूप से देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रमिष्ट नहीं करता। न हेनस्ति आत्मनात्मानम, यानी अपने मन के द्वारा अपने आप को यानी अपनी आत्मा को भ्रष्ट नहीं करता है वो, क्योंकि वो ये जानता है कि मेरे साथ परमात्मा भी बैठा हुआ है, मुझे उसकी तरफ देखना है, तो फिर मन की बातों में नहीं उलझता है। ठीक है, इसको आगे श्री प्रभुपाद जी समझाएंगे। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद की जय हो। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है, यानी कि जीव भौतिक अस्तित्व स्वीकार, यानी कि इस संसार में आकर जो भौतिक अस्तित्व है ना हमारा, क्या ये शरीर है, उसको जब हमने स्वीकार कर लिया कि हम ही सब कुछ हैं, तो अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया। तो उसका आध्यात्मिक अस्तित्व क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, उससे अलग हो गया है उस, अब उसको ये विस्मृति हो गई ना, भूल गया है यहाँ पर संसार में ये गुणों के कारण अपने आप को ये शरीर मानता है ना, सबसे बड़ा इसका दुख ही यही है। इस दुख से खाली कोई हमें, इस विस्मृति से कोई हमें जगाए कि बेटा नहीं हो तुम ये शरीर, ये बात अगर हमें सही में समझ जाए ना, तो समझो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी भी यहाँ पर बता रहे हैं, किंतु यदि वह समझ जाता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, यानी कि उसको ये याद आ जाए, समझ जाए अगर कि हर जगह पर हर जीव के अंदर परमेश्वर जो है वो हर जगह स्थित है परमात्मा के रूप में, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, यानी कि उसे ये नजर आना शुरू हो जाए, हर वस्तु में भगवान नजर आना शुरू हो जाए, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता, यानी कि फिर जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी मन में विचार आते हैं, जो भी हो बले, वो अपने आप को नीचे नहीं गिराएगा, क्योंकि उसे याद रह जाता है कि मैं जीवात्मा हूं और मेरे साथ मेरा परमात्मा हर जगह मेरे साथ है, तो फिर वो कभी भी नीचे नहीं गिरता है, और इसलिए यह क्रमशः वैकुंठ की ओर बढ़ता है। और क्योंकि अब साथ मिल जाता है ना उसको, जब ये रियलाइज हो जाता है कि परमात्मा मेरे साथ है, हृदय में बैठा हुआ है, और भगवान की उपस्थिति को हर जगह वो महसूस करता है, जैसे भगवान कहते हैं ना कि आप जैसे जैसे श्रद्धा रखोगे मैं आपका साथ दूंगा, और इसे करते करते वो क्रमशः आहिस्ता आहिस्ता वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता है। सामान्यतया मन इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लीन रहता है, यानी कि आमतौर पर सारे लोग का मन जो होता है ना वो इंद्रियों से टच होता है। जैसे हम पढ़ते थे ना दूसरे अध्याय में कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगासंग, यानी कि इंद्रियां जो चाहती है ना, जैसे इंद्रियां जिस भी चीज को देखना चाहेंगी, जो सुनना चाहेंगी, जो खाना चाहेंगी, उसके साथ आमतौर पर क्या होता है, मन उसके साथ सम्मिलित हो जाता है। मन बोलता है कि हाँ इंद्रिय ये चाहती है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी आत्मा की ख्वाहिश है ये, कुछ बोलते हैं ना मैं अपनी आत्मा को कैसे तरसता हूँ, असल में आत्मा नहीं तरसती है, आत्मा का की काम होता है कि है ना आप भगवान की, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन जो मन होता है ना आत्मा के साथ, मन जो फिट होता है वो क्या करता है, वो इंद्रियां जिधर आकर्षित होती है ना उसके साथ सम्मिलित हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा दूसरे अध्याय में कि एक भी इंद्रिय जिसके साथ मन सम्मिलित होता है तो वो आपके पतन का कारण बन सकती है, यानी कि फिर वैसे तो देखो इंद्रियां अपने से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इंद्रियां तो जड़ है ना, जैसे आंख देख रही है वो भले अच्छा दृश्य देख रही है, पसंद का देख रही है, नहीं पसंद का देख रही है, उससे वो आंख कुछ कर नहीं सकती, वो पदार्थ है, लेकिन जैसे ही मन उसके साथ टच हो जाए, समझो एक कोई अगर युवक है, कोई युवकी को देखता है तो आंख से देखने से उसका कोई हानि नहीं होती, लेकिन जब मन उस इंद्रिय के साथ टच हो जाता है और मन बोलता है कि नहीं मुझे इससे बात करनी है, इससे चैट करना है, इसको इसके बारे में जानना है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन यही बात बताते हैं कि सामान्यतः मन क्या करता है, अब उसके पास क्योंकि अलग से कोई चीज होती नहीं है, भगवान का विषय होता नहीं है, आम लोग के पास परमेश्वर का विषय नहीं होता है, कृष्ण प्रेम नहीं होता है, तो क्या करता है बेचारा, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लीन रहता है। वो हमेशा सोचता है जो मेरी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है उसी के साथ आगे आगे पीछे पीछे उसके भाग रहा होता है। लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है, क्योंकि पहले वो परमात्मा की ओर देखता ही नहीं था ना, वो तो सिर्फ उधर ही देख रहा था जहां पर इंद्रियां देख रही थी, तो उसी के साथ टच हो रहा था। लेकिन जब वो परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है, जब भगवान की ओर देखता है और अपनी सारी इंटेंशन जो है वो भगवान की ओर कर लेता है, तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ता है। फिर ही पॉसिबल है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़े। और आहिस्ता आहिस्ता कितना अच्छा बताया गया है, ततो याति पराम गतिम, और इस प्रकार से दिव्य गंतव्य को प्राप्त करते हैं, यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।